नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। दोनों सेनाओं की तरफ से निश्चय हो गया कि युद्ध तो होगा ही। कुरुक्षेत्र में पड़ाव डाल दिया, सारा प्रबंध कर दिया, बस आजकल आजकल की बात है। बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा, देखो भाई, आप लोगों को संधि कर लेनी चाहिए थी, नहीं किया, तो अब युद्ध तो होगा। मेरे लिए तो दुर्योधन भी वैसा ही है, भीमसेन भी वैसा ही है, दोनों को ही मैंने गदा युद्ध सिखाया है। कृष्ण की बात जब पांडवों ये कौरवों ने नहीं मानी तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। और कृष्ण भी पांडवों का पक्ष ज्यादा लेता है। मैंने तो इसको कई बार कहा, तुम्हारे लिए जैसे पांडव वैसे दुर्योधन, परंतु जब अर्जुन सामने आता है तो जाने कृष्ण को क्या हो जाता है, वो तो उस पर एकदम मुग्ध हो जाता है। तब मैंने विचार किया कि पांडव लोग निश्चित जीतेंगे, जिसके पक्ष में कृष्ण है वो कभी हारने वाला नहीं है। अब मैं तो तीर्थ यात्रा में जाता हूं, ये यहां तक कल प्रसंग हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। कौन? रुक्मणी जी का भाई, भगवान कृष्ण का
साला हुआ ना,
साला वो लेकर के आया एक अक्षौहिणी सेना लेकर। वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता था और सीधा पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। महाराज युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने बड़े प्रेम से सबका अभिवादन किया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन सच बताओ, तुम्हारे मन में यदि किसी प्रकार का भय है, यदि है तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आया हूं। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि शत्रु उसको सहन नहीं कर सकेंगे, मेरी युद्ध कला के सामने कोई नहीं ठहर सकता। संसार में मेरे समान पराक्रमी दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे किसी के भी सामने खड़ा कर देना, किसी के भी मोर्चे में चला जाऊंगा, किसी भी सेना का भार सौंप दोगे तो उसको पूरा करूंगा और शत्रु सेना को तहस नहस कर दूंगा। चाहे द्रोण आए, चाहे कृपाचार्य आए, चाहे भीष्म आए और चाहे कोई कर्ण आए, कोई भी वीर हो, मुझे किसी से भय नहीं है। अर्जुन, यदि सारे ये योद्धा एक साथ भी इकट्ठे होकर मेरे सामने आए तो मेरे मन में युद्ध का उत्साह कम होने वाला नहीं। मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें पृथ्वी का राज्य सौंपने के लिए आया हूं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। थोड़ी देर में युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं और फिर कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण और अर्जुन की आंख ही आंख में बात होती है और अर्जुन थोड़े हंसने भी लग गए, मर्यादा में हंसे और शांत भाव से कहने लगे, हे रुक्मी जी, मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, फिर मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूं, और फिर श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ में है, फिर मैं आपको ये कैसे कह सकता हूं कि मैं डर गया हूं, मैं भयभीत हूं। हे वीर रुक्मी, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया? इसी प्रकार विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले मैंने ही तो युद्ध किया था, मैंने किससे सहायता मांगी? मैंने युद्ध के लिए भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और मेरे पास खड़े श्री कृष्ण की उपासना की है। मैं इनके सामने नम्र हूं, अतः मैं युद्ध से डरता हूं। ऐसे मेरे यश का नाश करने वाली बातों को सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। ऐसी बात तो मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कही, इसलिए हे महाबाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हे रुक्मी, आप अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहना चाहो वहां चले जाओ, जहां रहना चाहो वहां रहो और खूब आनंद से रहो। रुक्मी ने अर्जुन को देखा, अब की बार दृष्टि के अंदर थोड़ा अहंकार था। रुक्मी ने मनी मन में अर्जुन की वाणी सुनकर कष्ट का अनुभव किया। क्या अर्जुन को मेरे पराक्रम पर भरोसा नहीं? अर्जुन मुझे अपना पराक्रम दिखाकर मेरे पराक्रम को लेना नहीं चाहता, अच्छी बात है। खिन्न होकर वो मुंह मोड़कर चला गया। देखो माताओं बहनों, सूरदास जी ने रस्तों दे दो तो रुक्मी वहां से अपनी विशाल वाहिनी सेना को लेकर, विशाल वाहिनी को लौटाकर और दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से कहने लगा, दुर्योधन आज मुझे पराक्रम दिखाने का कुछ मौका दो। अर्जुन के पास गया, अर्जुन ने मुझे ठुकरा दिया। दुर्योधन, तुम्हें यदि अर्जुन का भय हो तो मुझे बताओ, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और दुर्योधन को लगा कि पांडवों ने जब इसको ठुकरा दिया है तो ये मेरे पक्ष में रहकर कृष्ण का साला होकर और कृष्ण के विपरीत युद्ध करेगा, समझ में नहीं आता। दूसरा, अर्जुन को, दुर्योधन को भी वीरत्व का अभिमान था कि मैं भी वीर हूं। उसने कह दिया, रुक्मी, अर्जुन के ठुकराए हुए को मैं यदि सहायता के रूप में स्वीकार करता हूं तो ये मेरा अपमान होगा। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी, ये दो वीर, उस युद्ध से निकलकर अलग हो गए। बलराम जी तो तीर्थ में चले गए थे और रुक्मी अपने नगर की ओर लौट आया। इधर दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया। तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहां क्या हुआ? मैं तो समझता हूं होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मैं तो सब चाहता था कि कौरवों का और पांडवों का मेल हो जाए, पर मेरा पुरुषार्थ कहां चला? मेरी बुद्धि दोषों को अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर बदल जाती है। अब चलो, होगा जैसा होगा, बताओ वहां क्या कर रहे हैं। संजय ने कहा, महाराज महात्मा पांडवों ने तो हिरण्यवती नदी के तीर पर पड़ाव डाल दिया है और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाल दी है। दुर्योधन के मन में बड़ा उत्साह है, सेना का खूब प्रबंध कर रहा है, अलग अलग टुकड़ियों को अलग अलग स्थान पर नियुक्त करके राजाओं का बड़ा सम्मान कर रहा है। फिर उन्होंने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त बातचीत की है और उस गुप्त बातचीत के बाद उलूक को बुलाकर कहा, ये उलूक है, ये शकुनी का बेटा है। उलूक, ये बार बार उलूक शब्द आएगा तो इसका आप उल्लू अर्थ मत समझना, उल्लू पक्षी वो नहीं, उलूक नाम है शकुनी के पुत्र का नाम। तो शकुनी के बेटे उलूक को बुलाकर कहा, उलूक तुम एक काम करो, तुम पांडवों के पास जाओ और पांडव लोग जब कृष्ण के साथ बैठे हों तभी हमारा संदेश सुनाना। पांडव अलग हों, कृष्ण अलग हों, उस समय ये संदेश मत सुनाना, उनको ये संदेश कहो। जिसके लिए बरसों से विचार हो रहा था वह कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध अब होने वाला है, कृष्ण के सामने कहना, अर्जुन तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के सहित संजय से जो गरज गर करके बड़ी शेखी की बातें कही थी वे उसने कौरवों की सभा में सुनाई थी, अब उन्हें करके दिखाओ, समय आ गया है। अर्जुन बड़े धार्मिक कहलाते थे, अब तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है? इसी को ही बिडाल व्रत कहते हैं, बिडाल व्रत। बिडाल माने, बिडाल का अर्थ होता है बिलाव। बिलाव का व्रत क्या होता है? बिल्ली है ना, जब तक चूहा नहीं आए बिल्ली बिलाव कोई दुबक करके, जैसे बड़ी सीधी है, और जो ही उसका खाद्य आता है लपक करके दौड़ता है, इसको कहते हैं बिडाल व्रत। तो तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है, इसी को ही बिडाल व्रत कहते हैं। हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था, वो तुमको सुनाता हूं। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा के तट पर ऊर्ध्व बाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को विश्वास दिलाने लगा, मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं, हे चूहों, हे पक्षियों, तुम्हें अब मेरे से कोई भय नहीं करना चाहिए, देखो मैंने सबको मारने का विचार छोड़कर गंगा के तट पर आकर रहने का विचार किया है, मेरे से तुम कोई भय मत मानना। ऐसी उसने घोषणा की और चुपचाप वहां बैठता था। धीरे धीरे पक्षियों का उस पर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे। पक्षी लोग देखते कि देखो हम लोग कभी उसके पास से जाते हैं, हमको तो ये मारता नहीं है, ये वास्तव में गंगा के किनारे बैठकर अब ये तपस्या कर रहा है। इधर बिड़ावले समझा कि लोग, ये पक्षी लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं तो मेरी तपस्या अच्छी फलीभूत हो गई। बहुत दिनों के बाद चूहे भी वहां आए और बिलाव के सामने बैठ गए और उस तपस्वी बिलाव को देखकर चूहे सोचने लगे, हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर ये बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक है उनकी रक्षा किया करेगा। तब उन सब ने उस बिड़ावल के पास जाकर कहा, हे मामा जी, आप हमारे उत्तम आश्रय हो, आप हमारे परम सुहृद हो, हम आपको अपना मामा मानते हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप बहुत वर्षों से यहाँ तपस्या करते हैं, आप गंगा के किनारे अब अहिंसा का व्रत पालन कर रहे हैं, अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, ऐसे आप हमारी भी रक्षा करना। हमारे पर कोई दूसरा बिलाव आकर आफत करे तो आप हमारी रक्षा करना। चूहों के इस प्रकार कहने पर चूहों को मारकर खाने वाला बिलाव कहने लगा, मैं तपस्या भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं, ये दोनों काम होने का मुझे कोई ढंग नहीं दिखता है। फिर भी तुमने जो ये कहा कि हमारी रक्षा करो, हमारा हित हो जाएगा, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम्हें भी नित्य प्रति एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूं, अब मेरे में चलने फिरने की शक्ति नहीं है, अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुंचा दिया करो, एकदम नदी के किनारे। क्या पता कब मेरे प्राण निकल जाए तो नदी के अंदर ही मेरा शरीर चला जाए, तो मेरी मुक्ति हो जाए। तो तुम सब लोग आना और मुझे नदी के किनारे तक पहुंचा देना। चूहों ने कहा, मामा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपकी सेवा करेंगे, हमको सेवा का मौका मिल गया। सब बूढ़े बालक जितने भी चूहे थे, सब चूहे बड़े खुश हो गए। इधर पापी बिलाव उन चूहों को, जो भी कोई रक्षा करने के लिए आता, एक साथ मार मार करके खा जाता, और चूहों की संख्या दिनों दिन घटने लगी। तब उन चूहों ने आपस में मिलकर के कहा, मामा जी, आपकी और हमारी जब शर्त हुई थी तब तो आप बहुत दुबले पतले मरियल थे, आजकल आप खूब मोटे ताजे फूलते फालते हो गए, इसका कारण क्या है, इतने मोटे कैसे हो गए? हम तो संख्या में घट गए, आप मोटे हो गए, इसका कारण क्या है? तो वो तो कुछ नहीं बोला, पर उनमें एक बूढ़ा चूहा था, उसने कहा, अरे तुम कौन से मामा के चक्कर में पड़ गए हो, इस मामा को तो धर्म की परवाह थोड़ा ही है, ये तो ढोंग रच रहा है, हमसे मेल जोड़ बढ़ा करके केवल अपना काम बनाना चाहता है। देखो तुम बिलाव के पास, मामा के पास आने से पहले सुगली बात लिखी है, इस बिड़ाल के, इस बिलाव के विष्ठा को देखो, उस विष्ठा में चूहों के बाल हैं कि नहीं है? यदि चूहों के बाल हैं तो जरूर इसने चूहे खाए हैं। और देखो अपने सब चूहों में एक खूब हंसता खेलता कूदता अपने साथ खूब मजाक करने वाला एक बिंडिक नाम का चूहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब चूहे भाग गए और देखा कि बिलाव तो खाने वाला है, तो बिलाव छोटा मुंह करके एक तरफ बैठ गया, सब ये चूहे भाग गए। अर्जुन, लगता है तुम भी उस बिड़ाल की तरह चालाकी करना चाहते हो, ऊपर से तुम धर्म का आचरण करते हो और आज सगे संबंधियों के साथ तुम युद्ध करने का काम करके बड़े भारी धर्माचारी बनना चाहते हो। तुम्हारी बातें तो और प्रकार की हैं और कर्म और प्रकार का। दुनिया के सामने धर्म की बातें करते हो और कर्म यह है कि तुम सगे संबंधियों को मारने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो। तुमने दुनिया को ठगने के लिए वेदाभ्यास किया, शांति का स्वांग किया और अब तुम ये पाखंड करके छात्र धर्म का आश्रय लेते हो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पूछो और संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके अपना सम्मान करो। तुमने हमसे 5 गांव मांगे थे किंतु यह सोचकर कि किसी प्रकार पांडवों को कुपित करके उनसे संग्राम किया जाए, दो दो हाथ किया जाए, इसलिए हमने तुम्हारी मांग को मंजूर नहीं किया। नहीं तो 5 गांव हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी? तुमने तो बड़ी बड़ी तपस्याएं की थी ना, फिर 5 गांव पर तुम क्यों आ गए भाई? तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्ट चित्त विदुर को त्याग दिया था। कौन बोल रहा है? दुर्योधन, उसका संदेश सुना रहे हैं। मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था, याद करो इस बात को, और इस बात को याद करके मर्द बन करके आओ और मेरे सामने युद्ध करो और फिर इस कृष्ण का आश्रय लेकर बैठे हो। इतने बड़े वीर होकर शर्म नहीं आती? ये बात कहना दुर्योधन कह रहा है। छोड़ो इस कृष्ण को, क्या तुम्हारे पास बल पौरुष नहीं है? और उलूक कृष्ण की तरफ बार बार तिरस्कार पूर्वक अंगुली करते हैं। कहना तुम इस कृष्ण की सहायता लेते हो जिस कृष्ण ने अपने जन्म दी माँ बाप को छोड़ दिया, दूसरों को माँ बाप बनाया, उस कृष्ण की सहायता लेते हो जो जरासंध से डरा हुआ है, युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गया है, उस कृष्ण की सहायता लेते हो? ऐसे कृष्ण की तरफ अंगुली करके कहना, किसी भी उपाय से अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति अलगाव की भावना हो जाए, इस तरकीब से तुम बात करना। और कृष्ण से कहना, अरे कृष्ण, क्या तुम इतनी चतुराई दिखाते हो? पांडवों की रक्षा के नाम पर तुम पांडवों को और हमको लड़ाना चाहते हो? दुर्योधन ने संदेश दिया है, कृष्ण तुम्हारे में ताकत हो, तुम खुद क्यों नहीं आते? अर्जुन सोचो, कृष्ण कितना चालाक है, अपने घर में आग लगा रहा है, स्वयं पीछे रहता है, स्वयं ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, स्वयं कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों करेगा? अर्जुन तुम्हारे जैसा मूर्ख उसको मिल गया, इसलिए वो तो छिप करके रहना चाहता है, तुमको युद्ध में आगे करना चाहता है। तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था वैसा फिर धारण करके अर्जुन के साथ हमारे पर अब चढ़ाई करो? इंद्रजाल, माया, कपट, झूठ बोलना, ये क्या वीरों का काम? अरे रणांगण में आए हो तो शस्त्र ले। तुमने तो कह दिया मैं शस्त्र भी नहीं रखूंगा। ऐसी नपुंसक के साथ तुम रहना चाहते हो अर्जुन? हम भी यदि चाहें तो आकाश में चढ़ सकते हैं, रसातल में घुस सकते हैं, इंद्रलोक में जा सकते हैं, परंतु इससे कोई बड़ा लाभ हमको दिखता नहीं है। हम केवल धमकियां नहीं देते हैं, कृष्ण मायावी है, भरी सभा में विराट रूप दिखाकर हमको धमका रहा है। हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। ऐसे हमारे यहां बहुत से जादूगर हस्तिनापुर में फिरते रहते हैं। तुमने जो ये कहा था कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवाकर पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा, कृष्ण यह तुम्हारा संदेश हमारे पास आ गया है और वो समय भी आ गया है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक कमर कस करके युद्ध करो और हम लोगों का पौरुष भी देखो। संसार में तुम्हारा अकस्मात यश फैल गया, तुमने कुछ किया ही नहीं और लोग तुम्हारी कीर्ति गाते हैं। जरूर कृष्ण तुम माया जाल में निपुण हो, सबको फंसा रखा है, लेकिन मैं दुर्योधन तुम्हारी माया जाल में कभी फंसने वाला नहीं, तुम्हारी माया जाल को अच्छी तरह से समझ गया। आज मुझे मालूम चला है जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है वे केवल पुरुष दिखते हैं, वो हिंजड़े हैं। अरे तुम हो कौन? तुम कंस के एक सेवक ही तो हो। मेरे जैसा राजा महाराजाओं को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में जाने में ही शर्म आती है, तेरे से युद्ध करें। और उलूक फिर भीमसेन की तरफ देखना, भीमसेन की तरफ देख करके कहना, दुर्योधन ने कहा है ए बिना मूंछ के मर्द, हे बहुभक्षी, हे अज्ञान की मूर्ति, हे मूर्ख भीमसेन, तुम कौरवों की सभा में प्रतिज्ञा कर चुके हो कि धृतराष्ट्र के 100 बेटों को मैं अकेला मारूंगा और उनको कोई मारेगा तो मैं उसको मारूंगा। अब वो प्रतिज्ञा का समय आ गया है, यदि शक्ति रखते हो आओ दुशासन का खून पियो। तुमने कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, अब तुम कृष्ण और अर्जुन के पीछे क्यों छिपे छिपे रहते हो? फिर तुम मेरी ओर से नकुल को कह देना, नकुल तुम छोटे हो, तुमको मैं डांटना नहीं चाहता, तुमसे तुम्हें प्रेम करना चाहता हूं, परंतु इन पांडवों के साथ रहने पर तुम प्रेम के भी पात्र नहीं रहे। यदि तुम्हारे अंदर भी पुरुषार्थ है तो आओ अपना पुरुषार्थ दिखाओ। अब तुम युधिष्ठिर के अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रौपदी के क्लेश को अच्छी तरह से याद कर लेना। हम वही धृतराष्ट्र के बेटा है जिन्होंने भरी सभा में तुम्हारी पत्नी को हमने लज्जित किया था। कर लो, तुमको जो उपाय करना है सो कर लो, ऐसे तुम निदबंग होकर बोलना। वहीं पर विराट नरेश मिलेंगे, वहीं पर द्रुपद मिलेंगे, मेरी ओर से तुम उनको भी कहना कि आप सब लोग मरने के लिए आए हो कि मारने के लिए आए हो? मुझे तो लगता है तुम सब मरने के लिए आए। अब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बात में है। यदि आप अभी भी अपने परिवार से, अपने राज्य से, अपने कोष से, अपने शरीर से प्रेम करते हो तो चुपचाप दुर्योधन के क्रोध करने से पहले ही अपने शिविर को छोड़कर अपने अपने नगर की ओर चले जाओ। ये अंतिम मौका है, नहीं तो युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागने से जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी वो अपकीर्ति तुम्हारे सारे कुल के अंदर फैल जाएगी। शिखंडी से कहना, अरे शिखंडी, भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर युद्ध करो। परंतु हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें मार सकते हैं। इतना कहने के बाद वही दुर्योधन खूब हंसा और हंसते हंसते कहने लगा, उलूक तुम कृष्ण के सामने अर्जुन से एक बात ये भी कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, नहीं तो हमारे हाथ से हार कर तुम्हें पृथ्वी का शयन करना होगा। या तो शासन करोगे या शयन करोगे, मर जाओगे। जिस काम के लिए क्षत्राणी पुत्र प्रसव करती है उसका समय आ गया है, ये तुम्हारी माँ ने कहा ना, ये बात हम भी तुमको बोलते हैं। अब तुम संग्राम में अपने बल पौरुष अस्त्र लाघव पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा तो करो, हमने तुम्हें जुए में हराया है, याद रखना। हमने तुम्हें वनवास भेजा है, हमने तुम्हारे सामने द्रौपदी को सभा में घसीटा है, 12 बरस तक घर से निकालकर वन में रखा है, 1 बरस तक विराट के घर में रहकर तुम्हें गुलाम बनने के लिए मजबूर किया है। हमने देश निकाला दिया, हमने वनवास दिया, हमने द्रौपदी का क्लेश बढ़ाया, जरा मर्द हो तो आओ ले उसका बदला। ये दुर्योधन अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में तुमको बढ़ चढ़ करके ललकार रहा है, दिखाओ अपना पौरुष। याद करो तुम पितामह भीष्म पर, दुर्धर्ष कर्ण पर, महाबली शल्य पर, आचार्य द्रोण पर बाण चला पाओगे? क्या बाल हत करते हो अर्जुन, एक बाण से तुम्हारा कलेजा बीन देंगे पितामह भीष्म। अरे पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसे मरने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर ले और फिर वो जीवित रह जाए? नहीं रह सकता। ये मैं जानता हूं कि कृष्ण तुम्हारी सहायता में, तुम्हारे पास गांडीव धनुष है और तुमने देवताओं से बड़ा भारी वरदान भी प्राप्त किया है। तुम अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा मानते हो, ये बात मेरे से छिपी नहीं है, किंतु लो ये सब जान करके भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूं। 13 बरस तक तुमको रो रो करके समय निकलवाया है और तुम्हारा राज्य मैंने भोगा है और वो राज्य आज भी मेरे पास है और अब भी मैं तुमको भाई बंधुओं सहित मारने का बल रखता हूं, ये मेरी चेतावनी है। अर्जुन उस दिन को भी याद करना कि भरी सभा में हमने तुमको अपना दास बनाया था, तुम्हारे मुकुट मेरे चरणों में रखे थे। कहां गया उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष, कहां गया वो भीमसेन का बल? उस समय तो अनिंदिता कृष्णा की कृपा के बिना गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी दासत्व से मुक्त नहीं हो सकते थे, तो केवल द्रौपदी की कृपा थी। अब देखो यह मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोई पकाते पकाते चैन नहीं मिली और तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिंजड़े का रूप बना करके राजकन्या को नचाना पड़ा। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य दे दूंगा, इसके लिए कृष्ण को तुमने भेजा, ऐसे हम पोले आदमी नहीं है। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर आओ, जो हमारा करना है सो करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भागते फिरेंगे, फिर तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय वो तुम्हारे लिए बड़ा संताप करेंगे और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़कर बैठ जाता है, उस समय तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा छूट जाएगी। इसलिए अभी भी तुम सोच समझ करके कदम उठाओ। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार चुपती चुपती बातें कहकर के दुर्योधन ने उलू को पांडवों की छावनी में भेजा और उलू पांडवों से मिलकर यादव युधिष्ठिर से कहने लगा कि महाराज आप दूत के वचनों से परिचित हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप मेरे पर क्रोध मत करना, क्योंकि मैं तो एक दूत हूं और दुर्योधन ने जिस ढंग से कहा है उसी ढंग से मैं आपको कहता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, हे उलू, दुर्योधन की बातों का यदि हमारे अंदर भय होता तो हम सेना लेकर क्यों इकट्ठे होते? तुम बेखटके उस मूर्ख अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ, क्या उसने तुमको सुनाया है? उलूक ने कहा, महाराज, दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहलवाया है वो सुनिए। उन्होंने कहा है, हे पांडव, तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बनो, मर्द हिंजड़े मत रहो। भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त रखी थी कि मैं दुशासन का खून पीऊंगा, सो अब यदि इसके ताब हो तो पी लो, इसके बस की बात हो तो पी लो। अभी दुशासन जिंदा है और उसके शरीर में खून मौजूद है, ये भीमसेन को हम ललकारते हुए बोलते हैं। दुर्योधन ने कहा है कि अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान हो चुका है, कुरुक्षेत्र की कीचड़ भी सूख गया है, मार्ग चौरस हो गए हैं, इसलिए अब आओ कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आओ, देखते हैं तुम्हारे में कितना पौरुष है। आओ पितामह भीष्म के बाण, दुर्धर्ष कर्ण के बाण, महाश्री महाबली शल्य के बाण और आचार्य द्रोण का युद्ध कौशल, इसको जरा तुम अच्छी तरह से देख लो। भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर ले तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए फिर वे जीता रहे? असंभव बात। राजा युधिष्ठिर ने कहा, कुलूक, तुमने कह दी अपनी बात। अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन, आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो? ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आओ। ये दुर्योधन बोल रहा है, इसके द्वारा संदेश आया है। अब तो युद्ध करने से कोई काम बन सकता है, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं, गांडीव धनुष है, तुम्हारे समान कोई योद्धा भी नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। किंतु लो, मैंने ये सब जानकर के भी तुम्हारा राज्य छीना है। लो, 13 बरस तक मैंने अपने हिम्मत से तुमको वन में भेजा है, और लो, हमने तुम्हारे द्रौपदी के साथ भरी सभा में अपमान भी किया है। तुम दासत्व के बंधन से मुक्त हो गए, ये तो बात द्रौपदी की कृपा थी, लेकिन तुम हमारे एक समय दास तो बने ही थे ना। ये बोलता है और वो कहता है कि विराट नगर में तुम ही इतने बड़े पुरुष होकर के सिर पर स्त्रियों की चोटी लटकाकर हिंजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाते थे। वो अर्जुन आज गांडीव धनुष लेने में गौरव करते हैं, शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने तुमको हिंजड़ा बनाया और हम लोगों के सामने तुम शस्त्र लेकर किस मुंह से खड़े हो सकते हो? वो कहता है, मुझे कृष्ण का भय नहीं है। वो कहता है कि कृष्ण और अर्जुन आओ, करो मेरे से युद्ध। हजारों कृष्ण, सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में बैठे हुए थे, उल्लू की ये बातें सुनकर के एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब कृष्ण ने खूब बड़े प्रसन्नता से मुस्कुराकर कहा, उल्लू, क्यों हमारा समय खराब करते हो? तुम जाकर दुर्योधन के पास यही कहो कि हमने तुम्हारी सब बात सुन ली है और तुम जो युद्ध चाहते हो वैसा ही होगा, निश्चित होगा और अवश्य होगा। जा, भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबूला हो गया, दांत पीसने लगा और उलूक से कहने लगा, उलूक एक बार तो मन करता है तेरा गला पकड़ करके तुझे यहीं पूरा कर दूं, पर दूत है तू इतनी बात बोला कैसे, चाहे दुर्योधन ने कही तू मुझे कैसे सुना रहा है, निमूचिया हिंजड़ा बहु बक्षी कैसे कह दिया मुझे, कांपने लगा, मैं क्या करूं, मैं तो दूत हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भीमसेन दूत अदंड है, दूत का अपराध नहीं देखा करते। भीमसेन मान गए। भीमसेन ने कहा, बोलो मूर्ख दुर्योधन से, दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही सब हमने सुन ली है, अब मैं जो कुछ कहता हूं जाकर उसको सुनाना। तुम कहते हो क्षत्रिय है, हम कहते हैं कि तुम क्षत्रियों के सामने सूत पुत्र कर्ण को लेकर क्यों चलते हो, अर्जुन यदि कृष्ण को लेकर चलता है तो एक कारण है, कृष्ण हमारे संबंधी हैं, हमारे मामा के बेटा भाई हैं, पर तुम क्षत्रिय क्षत्रिय चिल्लाते हो, एक सूत पुत्र कर्ण को आगे क्यों रखते हो, क्या जवाब है उसके पास। और तेरा जो बाप है दुष्टात्मा शकुनी, उससे कहना कि शकुनी हमने अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहा है, मामा जी हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ आदर होना चाहिए, हमने कितनी बार तुमको इस विषय में छोड़ा है, धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे, इसी से उन्होंने कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, एक तो कृष्ण दूत बनकर के जो बात कहे भरी सभा में, और एक तू दूत बनकर के आकर जो बात बोलता है, मूर्खो कैसी बात कहनी चाहिए तुमको, तुम लोगों के सिर पर काल नाच रहा है, क्योंकि अब तुम यमराज जी के घर के एकदम निकट पहुंच चुके हो। अच्छा तो अब निश्चय ही कल हमारे साथ तुम्हारा संग्राम होगा, मैंने तो तुझे और तेरे भाइयों की मारने की प्रतिज्ञा कर ली कर ली कर ली, ऐसा होगा ही, समुद्र भले ही मर्यादा तोड़ दे, पहाड़ों के भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाए, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा, वो लोग दुर्योधन से बोलना, ए दुर्बुद्धे जा, बुला ले यमराज को कुबेर को रुद्र को जो तेरी सहायता करते हो बुला ला, तो भी अब ये भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा से एक सूत भी पीछे सिरकने के लिए तैयार नहीं है, और मैं तो उस दिन को अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन समझूंगा, जिस दिन भरे युद्ध भूमि में दुशासन के छाती का खून पी पी करके और मस्त हो जाऊंगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा वो यमराज के घर ही जाएगा, तीसरा उसको रास्ता मिलेगा ही नहीं। इस क्षत्रिय की सभा में मैंने जितनी बातें कही मैं सभा की सौगंध खाके कहता हूं कि सत्य करके रहूंगा। कौन बोल रहा है? भीमसेन। भीमसेन की बातें सुनने के बाद सहदेव भी क्रोध में भर गए और बोलने लगे, पापी उलू क्या तुम्हारा यही काम रह गया ऐसे ऐसे संदेश सुनाने का, क्या तुमने उस समय वापिस नहीं कहा कि वीर पुरुष कभी उल्टी सुल्टी बातों के दूत नहीं बनते, वीर पुरुष तो शस्त्रों के सामने जाकर खड़े होते हैं, मैं ऐसी बातें जाकर नहीं कहूंगा, ऐसा तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, इसका मतलब तुम वीर पुरुष नहीं हो, जाओ तुम अपने पिता से जाकर कहना शकुनी से कि यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध न होता तो हम में ये फूटी नहीं पड़ती। तुमने ही कौरवों को और पांडवों को दो किया है, तुमने ही धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों के नाश करने के लिए जन्म लिया है, ये तेरे बाप की करतूत है। उलूक साक्षात तुम शत्रुता की मूर्ति हो, अपने कुल का उच्छेदन करने वाले हो, महापापी हो, जो आपस में एक दूसरे के अंदर आग पैदा करता है उसके समान कोई पाप नहीं होता। उलूक याद रखना, इस संग्राम में मैं पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे बाप शकुनी को मारूंगा, और सहदेव की तलवार से मरा भीम। और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए भीमसेन से कहा, भाई जी आपके साथ जिन लोगों का बैर है उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में अब है ही नहीं, मर गए, किंतु ये उलूक जैसे नीच प्राणी को, पापी प्राणी को इतनी बड़ी बात आप क्यों बोलते हैं? ये इसका अधिकारी नहीं है। दूत बिचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा सुना देते हैं। डरपोक कायर अपने मालिक की रोटी पर जीने वाले हैं, इसको क्या कहना। भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टद्युम्न आदि अपने संबंधियों से कहा, सुन लिया आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें, इनमें विशेष रूप से मेरी और कृष्ण की निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे ही हित की दृष्टि से रोष में भर गए होंगे, किंतु आप लोगों की सहायता और कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को भी कुछ नहीं समझता हूँ। अब आप सब मुझे आज्ञा दें तो मैं उलूक को उन बातों का उत्तर दूं, और यदि आप नहीं कहे तो नहीं सही, नहीं तो कल तो गांडीव धनुष के द्वारा मुझे जवाब देना ही है। अर्जुन की बात सुनकर सब राजा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सब का उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया, और दुर्योधन के संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा, उलूक तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है, अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित कर लिया है, किंतु हम क्षत्रिय हो, हाँ तुम क्षत्रिय हो, इसलिए हमारे माननीय भीष्मादि को और स्नेहास्पद लक्ष्मणादि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे पांडवों को युद्ध में बुलाना, पितामह को आगे मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे भी दादा हमारे भी दादा। यदि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो तो तुम लोग ही आगे आना, इनको आगे क्यों लाना। जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को संग्राम के लिए बुलाता है, स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता, उसी को नपुंसक कहा जाता है। कृष्ण ने कहा, उलूक घबराओ नहीं, हम दूत धर्म को जानते हैं, इसलिए हम तुम्हें स्पष्ट बात बोल देते हैं। दुर्योधन से मेरा ये संदेश कहना कि दुर्योधन जब ये युद्ध का समय आ ही रहा है तो ये बीच में दूत भेजकर बात बनाने की जरूरत क्या है। इसका मतलब है तुम अंदर से कहीं कहीं डर गए हो, भयभीत हो गए, यदि नहीं तो कल अपनी मर्दानगी दिखा देना। तुम तो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा और अर्जुन को आगे कर दिया, क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है। क्या इससे भी तुम्हें मेरा डर नहीं है क्या? मैं सारथी होकर के भी कुछ नहीं कर सकता क्या? सो याद रखो, इस युद्ध के अंत में कोई नहीं बचेगा। आग जैसे घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर सकता हूँ। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही स्वीकार करूंगा। अब कल तो तुम तीनों लोकों में कहीं भी उड़कर जाना चाहो अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करो तो भी वहाँ तुमको अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ मैं दिखाई दूंगा। कहीं चढ़ा जा आकाश में जा पाताल में जा वहीं मिल जाऊंगा। उल्टी पुल्टी बातें मनाते समय तुमको शर्म नहीं आती? भीमसेन की प्रतिज्ञा को तुम मिथ्या समझते हो? अरे मिथ्या मत समझो, तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो भीमसेन ने पी लिया है। क्यों तुम व्यर्थ की उल्टी उल्टी बातें करते हो? न तो हमारे में आपस में कोई भेद पड़ने वाला है और न महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें भी कोई आपस में स्नेह टूटने वाला है और न ये तुम्हारे भय से कोई भयभीत होने वाले हैं। उसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उलूक से कहने लगे, जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उसका मुकाबला करता है उसका नाम मर्द है, उसका नाम पुरुष है, उसका नाम वीर है, क्षत्रिय है। जाओ दुर्योधन से कहना सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब केवल आज की रात है, आज की रात जितना सोना हो सो लो, आज की रात जितना अपने मित्रों से मिलना है मिल लो, कल के बाद तुम्हारा जीवन हमारी मुट्ठी में रहेगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृद्ध पिता में भीष्म का ही संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो बातें सभा में कही थी उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुआ देखोगे। दुर्योधन, अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, गुरुजनों की बात न मानना और अधर्म पर तुले रहना, इसका बड़ा भयंकर दुष्परिणाम होता है। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ दोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे तो भीमसेन तुम्हें बुरी तरह से मारेंगे। तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आएगी। मैं तुमसे सच बात कहता हूं दुर्योधन, ये सभी बातें सत्य होंगी। युधिष्ठिर ने कहा, भैया उलू, तुम दुर्योधन से जाकर एक बात तो मेरी ये भी कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा तो कर ही कैसे सकता हूं? इसी से मैंने पहले ही केवल 5 गांव मांगे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है, तो मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो, तुमने श्री कृष्ण की भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की, अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है? तुम अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ, वहीं पर बाणों से बात करेंगे। बाणी से बात बंद कर। भीमसेन ने कहा, अवलोक, दुर्योधन पापी, शठ, क्रूर, कुटिल, दुराचारी है। मेरी ओर से कहना कि मैंने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा, सत्य करूंगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका खून पीऊंगा और तेरी जंघा को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर लूंगा। ये मेरी आज भी प्रतिज्ञा है, पहले भी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा मेरी अटल है। सच मानना दुर्योधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूँ। एक बात और सुन, मैं भाइयों सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा। दुर्योधन को बोल देना। नकुल ने कहा, अवलोक, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह से सुन ली हैं, अब मुझे जैसा करना है वैसा मैं करने में स्वतंत्र हूँ। सहदेव ने कहा, क्यों व्यर्थ खरा समय लगाते हो अवलोक? क्यों तुम यहाँ आए और क्यों तुमको दुर्योधन ने यहाँ भेजा, ये सब बातें व्यर्थ की है। शिखंडे ने कहा, निस्संदेह विधाता ने मुझे भीष्म के वध के लिए पैदा किया है, इसलिए सब धुरंधरों के देखते देखते भीष्म को मैं ही धराशायी करूंगा। फिर धृष्टद्युम्न ने कहा, मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को, उनके साथी और संबंधियों को मार डालूंगा। अंत में युधिष्ठिर ने करुणावश कहा, मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता था, ये सब नौबत दुर्योधन तुम्हारे ही दोष से आई है। जाओ दुर्योधन को कहो, अब तुम जो भी करना है जो करो, जहां जाना है वहां जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तब उलूक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। बीच बीच में कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का भी वर्णन किया। नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो जो बातें कही सब बातें सुना दी। उलूक की बातें सुनने के बाद दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी से कहा, मित्रों, पांडवों के पास सेना भी कम है, योद्धा भी इतने नहीं है, परंतु उनकी गर्जना से मेरा मन डर रहा है। आप लोग अपनी सेना को तैयार करो, कहीं ऐसा न हो कि जो पांडव बोलते हैं वो पूरा ही हो जाए। कर्ण ने कहा, मित्र दुर्योधन, जब आप किसी शत्रु को चेतावनी दोगे तो वो चेतावनी की भाषा बोलेगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, डरा हुआ आदमी ही दूसरे को डराया करता है। तुमने पहले पांडवों को डराया, इसका मतलब तुम डरे हुए हो, और अब पांडवों ने तुमको वापस धमकाने की बात कही, इसका मतलब वो भी डरे हुए हैं। इसलिए पांडवों के अंदर कोई बल नहीं है, तुम युद्ध का विचार दृढ़ रखो। युधिष्ठिर महाराज ने धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में चतुरंगिणी सेना पर सेना को सावधान किया। सब लोग अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। महारथी, भीम और अर्जुन आदि सब ओर से देखभाल और संचालन करते थे, और महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह देखा, उसको उसी के अनुसार सेना में जगह दे दी। अर्जुन को कर्ण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्तम औजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शल्य को कृतवर्मा के साथ, सात्यकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से, चेकितान को शल से और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को त्रिगर्त वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन तथा अन्यान्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दे दिया, क्योंकि वे इस संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझे जाते थे। इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग दोनों तरफ से हो रहा है और कौरवों ने द्रोणाचार्य को आगे रखा और इधर पांडवों ने धृष्टद्युम्न को आगे रखा और सब अपनी अपनी सेना लेकर वहां सुसज्जित होकर तैयार हो गए।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण।